मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे चुनाव आयोग और मौलिक अधिकार, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए जो एक दो खबरें हैं और उन पर थोड़ी सी एक सामान्य सी निगाह डाल लेते हैं। एक खबर तो आप लोगों ने आज पढ़ी ही होगी और खूब रुचि के साथ पढ़ी होगी। हमारे अखबार के प्रथम पृष्ठ इस खबर से भरे हुए हैं और वो खबर क्या है, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हमारे नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है। नाटू नाटू, और जो दूसरा ऑस्कर पुरस्कार मिला है वो है एलिफेंट विस्पर फिल्म को, और यह है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। याद रखिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, ये डॉक्यूमेंट्री है, और शॉर्ट फिल्म है, इन दो को ऑस्कर अवार्ड मिला है। और डेफिनेटली एक साथ दो को ऑस्कर अवार्ड मिलना भारतीय फिल्म जगत के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। इस पर मैं ज्यादा बातें करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में शायद ही इस पर कोई प्रश्न पूछा जाए। जब कोई चीज बहुत पॉपुलर हो जाती है तो प्रश्न नहीं पूछे जाते, और फिर यदि मैं इस पर बात न भी करूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आप बड़ी रुचि के साथ इसे पढ़ चुके होंगे और आप बकायदे नाटू नाटू सॉन्ग भी सुन चुके होंगे, तो इसलिए बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक राष्ट्रीय हर्ष का विषय है इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पर अपनी बात तो थोड़ी सी रखनी ही चाहिए। एक जो दूसरी खबर है ये भी अखबारों के मुख्य पृष्ठ की खबर है और एक बड़ी खबर है, और वो ये कि अमेरिका का एक और बैंक बर्बाद होने के कगार पर है, या कह लीजिए कि जो बैंकिंग क्षेत्र में जो संकट आया उसका शिकार बना है। ये जो दूसरा बैंक है फ्रेंड्स, इसका नाम है सिग्नेचर बैंक। सिग्नेचर बैंक, ये भी मतलब यूं कह लीजिए कि दिवालिया ही हो गया है। इससे पहले एक बैंक हो चुका है, आपको नाम मालूम होगा, सिलिकॉन वैली बैंक। दो बैंक जो बहुत बड़े बैंक हैं अमेरिका के। अखबारों में आपने ये भी पढ़ा कि कैसे जैसे ही ये दूसरे बैंक के दिवालिया होने की खबर आई वैसे ही हमारा जो शेयर मार्केट है बहुत नीचे चला गया। केवल हमारा ही नहीं बल्कि दुनिया के शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर पड़े। एक खबर, इसका प्रभाव। दूसरे प्रभाव के रूप में आपने यह भी पढ़ा कि कैसे जो गोल्ड के प्राइस थे वे अचानक बढ़ गए। गोल्ड के प्राइस और साथ सिल्वर के प्राइस भी काफी बढ़ गए। इनका आपस में क्या संबंध है, बस इस पर मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं। इसे समझने की कोशिश करिए और इतने ही समझ आपके लिए पर्याप्त है। आपको बहुत विस्तार में नहीं जाना है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है और दूसरा आप जनरल नॉलेज के तहत पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट हो तब फिर बात अलग है, फिर आप थोड़ा सा इसे गहराई से देख लीजिएगा। देखिए, जब हम बैंक कहते हैं तो वो बैंक क्या है? हो सकता है कि वो किसी निजी व्यक्ति का बैंक हो, उद्योगपति का बैंक हो, सरकार का बैंक हो, किसी का कोई भी बैंक हो सकता है, लेकिन बैंक में पब्लिक मनी होती है। हम सब जो सिटीजन्स होते हैं उस बैंक में पैसा जमा करते हैं। जब वो बैंक दिवालिया होता है तो किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? हम सब का पैसा बर्बाद हो रहा है, यानी कि यूं कह लीजिए कि जो धन हमने वहां जमा कर रखा था अब वो हमें वापस नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है। हालांकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो अपने कदम उठाती हैं, उस बैंक को अधिग्रहित करती हैं, इंश्योर करती हैं कि जिन लोगों का पैसा जमा है उन्हें वो पैसा मिल सके, लेकिन चीजें कुछ समय के लिए तो गड़बड़ हो ही जाती हैं। वो धन रुक जाता है, उतना आसान नहीं होता, और हो सकता है कि जब जमा पैसा वापस करने की बात भी हो तो उनमें कटौतियां कर दी जाएं कि जो जमा है उसका 50% मिलेगा, या अगर चलिए आप पैसा लेकर के भी आते हैं तो सरकार को अपने खजाने से पैसा डालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो आपको व्यवस्था करनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो पब्लिक का पैसा बैंक में जमा था वो खत्म हो गया, अब पब्लिक को पैसा नहीं मिल सकेगा। जब पब्लिक को पैसा नहीं मिलेगा तो आप चीजें खरीदेंगे कैसे? नहीं खरीदेंगे ना। तो जब आप चीजें नहीं खरीदेंगे तो जो चीजों का उत्पादन करने वाला तंत्र है या जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी चीजें बिना बिकी रह जाएंगी, और जब उनकी चीजें बिना बिकी रह जाएंगी तो उनको प्रॉफिट कहां से मिलेगा, और जब उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप ये बताइए कि उनके शेयर के रेट बढ़ेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, यह आपकी समझ में आ गई। और फिर यह भी होता है कि देखिए बैंक में अभी तो मैंने कहा कि पब्लिक का पैसा जमा होता है, लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो स्टार्टअप हैं, जब उनके पास धन अतिरिक्त रहता है तो क्या करते हैं, बैंकों में जमा करा देते हैं कि कम से कम कुछ तो ब्याज मिलेगा। तो इस तरह से जो बैंक हैं वो तो आप ये मान करके चलिए कि फेफड़े होते हैं अर्थव्यवस्था के, जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर वो फेफड़े ही खराब हो जाएं तो तंत्र की क्या हालत होगी समझा जा सकता है। दूसरी बात, सोने के रेट क्यों बढ़ गए? सोने के रेट इसलिए बढ़ गए कि लोगों को लगा कि नहीं, बैंक में पैसा जमा करना अब सुरक्षित नहीं है। तो ये बात अभी सामने आई नहीं है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग करते ये हैं कि बैंकों से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं कि भैया ये दो बैंक बर्बाद हुए, तीसरा भी बर्बाद हो सकता है, चौथा भी बर्बाद हो सकता है, तो वहां से वो धन विड्रॉ करना शुरू करते हैं। जब वो धन विड्रॉ करना शुरू करते हैं तो फिर अब उसे वे कहीं इन्वेस्ट करेंगे। अब उनके च्वाइस है कि वो कहां इन्वेस्ट करते हैं, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या फिर वो गोल्ड खरीदेंगे। गोल्ड पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा रहता है। शेयर मार्केट तो देखिए ऊपर नीचे होता रहता है, और आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट तो ऑलरेडी गिर ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो शेयर मार्केट में न करके गोल्ड, चांदी, पेट्रोलियम, इन सब पदार्थों में ज्यादातर वो निवेश करते हैं। तो जब सोने में निवेश करने का फैसला उन्होंने किया गोल्ड में, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। जब गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो सीधी सी बात है कि गोल्ड के रेट बढ़ गए, है ना। बहुत ही सरल सा सिद्धांत, बस यही सरल से सिद्धांत तो आपको अर्थशास्त्र के पढ़ने हैं, आपकी नैया पार हो जाएगी, विश्वास कीजिए। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूंगा, इन्हें ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें संदर्भ के रूप में लीजिए और बकायदे आंसर राइटिंग में और यहां तक के निबंध लेखन में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जो पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि चुनाव में पैसे वालों का, बाहुबलियों का और मीडिया की जो पक्षपाती भूमिका है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप देखिए कह रहे हैं ना, पैसे का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, बाहुबलियों का प्रभाव बढ़ रहा है जिन्हें आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग कह सकते हैं, और मीडिया भी बहुत ज्यादा पक्षपात रोल निभा रही है, पक्षपाती का रोल निभा रही है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट करना क्या चाह रही है? सुप्रीम कोर्ट कहना यही चाह रही है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वह इन पर भी विचार करे, राइट? कैसे इन्हें रोका जा सकता है, धन के प्रभाव को कैसे रोका जाए, अपराधियों के प्रवेश को कैसे रोका जाए और कैसे मीडिया को नियंत्रित किया जाए, इस पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि अभी क्या होता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको हटाने के लिए तो बकायदे एक प्रक्रिया अपनाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया होती है उससे उनको हटाया जा सकता है, लेकिन जो आयुक्त होते हैं उन आयुक्तों को बिना मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुशंसा के नहीं हटाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सभी के हटाए जाने की एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब अगर आयुक्तों को हटाना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसा के उन्हें हटाया न जा सके, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे जो मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनके अलग अलग कार्यकाल होते हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, अलग अलग कार्यकाल नहीं होना चाहिए। जो अंतिम बात है जो मैं आप लोगों के विशेष रूप से ध्यान में लाना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि प्रजातंत्र में विश्वास का अंतिम पड़ाव है चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता। देखिए, प्रजातंत्र में विश्वास का अंतिम पड़ाव है चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता। भारत का प्रजातंत्र कमजोर है और अगर राजनीतिक वर्ग ने कानून व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को केवल हवाई बातों तक सीमित रखा तो प्रजातंत्र ढह जाएगा। चुनाव आयोग की बात यहां कहां आई है? चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता, चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनी रहे, यह जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग को यही दायित्व दिया गया है कि वो पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व चुनाव आयोग को दिया गया। इसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जो आयुक्त होते हैं और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति है वो कैसे होनी चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न खड़ा होता है कि चुनाव आयोग ऐसा कैसे करे। क्या सच में इस मायने में मौलिक अधिकार भी इसके साथ जुड़े हुए हैं? आप इस प्रश्न पर विचार कीजिएगा। मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बातें भी कही हैं उनमें मौलिक अधिकार का कोई प्रश्न निहित है? और मैं आपको एक क्लू भी दे रहा हूं कि मैं आपको आज एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, अधिक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की दिशा में। आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा और मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्लीज आप सब इसे करें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: के कुमार, शिवांगी पांडे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, रविदत्त, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री उदयपुर से, आर्यन गुप्ता वाराणसी उत्तर प्रदेश से और आलोक शुक्ला सीधी मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।